आन्या ने झट से दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े अन्वय पर पड़ी, उसकी लबों पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। वहीं अन्वय का चेहरा हमेशा की तरह सख्त था। आन्या ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम आगे, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। क्यों, जब तक मुझे परेशान न कर लूँ तुम्हें चैन नहीं आता, जो मेरे आने का इंतज़ार कर रही थी? अन्वय ने उसे घूरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आन्या का मुंह बन गया। वो अंदर जाते हुए बोली, अकेले बोर हो रही थी मैं, इसीलिए तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। पर अब लग रहा है गलती कर दी मैंने। तुम्हारे इंतज़ार करने से बेहतर होता कि मैं भूत प्रेतों और वैम्पायर से ही बातें कर लेती। वो लोग भी तुमसे बेहतर होंगे। तुम्हारी तरह हर वक्त अपने घमंड में चूर सड़ा सा चेहरा नहीं बनाकर घूमते रहते होंगे। तो कर लेती भूत प्रेतों से बातें, तुम्हारी ही बिरादरी के होंगे, अन्वय ने तुरंत जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आन्या का मुंह बन गया। वो बिना कुछ कहे दनादन किचन में चली गई। अगले ही पल अन्वय की आंखें गहरी हो गईं। उसके मुंह से वैम्पायर शब्द सुनकर उसे वो पल याद आ गया जब जंगल में वो वैम्पायर के रूप में उसके सामने आया था। एक बार फिर वो सोच में पड़ गया कि आन्या कुछ भूली क्यों नहीं। फिर उसने अपना सिर झटका और कुछ कदम अंदर ही आया था कि आन्या एक बार फिर उसके सामने खड़ी थी। इस वक्त उसके हाथ में पानी का ग्लास था। अन्वय ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में सवाल लिए कठोर भाव से उस गिलास और आन्या को देखने लगा। तब आन्या ने नाक से कोरते हुए कहा, पानी ही है, जहर नहीं दे रही तुम्हें जो ऐसे घूर रहे हो। वैसे भी तुम्हें जहर देने का कोई फायदा ही नहीं होगा, तुम्हारे अंदर पहले ही कूट कूट कर जहर भरा पड़ा है, बस बेचारे का तुम पर कोई असर ही नहीं होगा। तो बेझिझक पानी पी सकते हो तुम। करना क्या चाहती हो तुम? पत्नी हो मेरी जो मेरा ध्यान रख रही हो? अन्वय ने गहरी निगाहों को उस पर टिकाते हुए सवाल किया। उसके सवाल सुनकर आन्या ने मुंह बनाकर कहा, मैं कुछ नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हारी पत्नी बनने की मेरी कोई ख्वाहिश है। मैं तो बस पानी लाई थी तुम्हारे लिए, काम से आए हो तो थक गए होगे। जब पापा ऑफिस से आते थे तो मैं उनके लिए भी पानी लेकर जाती थी। तो वो तुम्हारे पापा थे और मैं एक अजनबी, मेरे लिए कोई ये सब करे मुझे पसंद नहीं है, अन्वय ने आगे बढ़ते हुए बिना किसी भाव के जवाब दिया। पर आन्या फुदक कर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और लबों पर मोहिनी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, तुम अपने वाले अजनबी हो जो हैल होकर भी मेरे अपनों से ज्यादा खास हो मेरे लिए। मैंने बताया था ना, तुम्हारे साथ मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे बहुत पहले से जानती हूँ तुम्हें, कोई बहुत गहरा रिश्ता हो हमारा। अब ज्यादा नखरे मत करो और पानी पी लो। आन्या ने लगभग उसे ऑर्डर दे डाला तो अन्वय आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगा। आन्या ने अब क्यूट सी शक्ल बनाकर उसे देखा तो अन्वय ने उसके हाथ से गिलास ले लिया, आगे बढ़ते हुए बैक टेबल पर रखा और सोफे पर बैठकर पानी पीने लगा। आन्या भी उसके बगल में हाँ बैठी और मुस्कुराकर बोली, वैसे तुम्हारा कॉलेज कोएड है ना? अन्वय ने पानी पीते हुए छोटा सा जवाब दिया। आन्या की आंखों में चमक आ गई। उसने झट से दूसरा सवाल कर डाला, फिर तो लड़कियां भी होंगी, तुम्हें देखकर तो तुम पर फिदाई हो गई होंगी। इतना यंग और हैंडसम प्रोफेसर शायद पहली बार ही देखा हो उन्होंने। किसी ने तुमसे कुछ कहा, किसी से मिले या बात की, या कहीं किसी ने सीधे तुम्हें प्रपोज तो नहीं कर दिया? उसकी बात सुनकर अन्वय ने गिलास नीचे रख दिया और उसकी तरफ घुमाकर उसे घूरते हुए बोला, मैं वहां पढ़ाने गया था, कोई आवारा लड़कों की तरह मटर गस्ती करने या गर्लफ्रेंड पटाने नहीं गया था। अरे तो मैंने कब कहा कि तुम वहां गर्लफ्रेंड बनाने गए थे? मैं तो बस पूछ रही हूँ, तुम्हें देखकर कोई लड़की तुम्हारी दीवानी ना हो ये पॉसिबल नहीं है। किसी ने तो कुछ कहा या किया होगा, मुझे बस वही जानना है। आन्या ने एक बार फिर मुस्कुराकर उसे देखा, जैसे अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रही हो। अन्वय कुछ पल खामोश निगाहों से उसे घूरता रहा, फिर तंज कसते हुए बोला, लगता है गॉसिप सुनने का बहुत शौक है तुम्हें, पर यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि मैं थक कर आया हूं तो शायद तुम्हें कुछ देर मुझे चैन की सांस लेने देनी चाहिए? आन्या मुंह बनाते हुए बोली, जाओ मत बताओ, पता है मुझे, जरूर किसी ने तुम पर लाइन मारी होगी, तभी इतना भड़के हुए हो, वरना सीधे से इनकार नहीं करते थे कि किसी ने कुछ नहीं कहा। लो अब चैन की सांस, मैं जा रही हूं, उसने गाल फुलाते हुए कहा और उठकर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। अन्वय ने एक नज़र बालकनी के बंद दरवाजे को देखा, फिर अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद बाहर आया तो आन्या कपड़ों को तह करके बेड पर अलग अलग रख रही थी। अन्वय को देखकर उसने मुंह बनाया और अपने कपड़ों को उठाकर अलमारी में रखने लगी। अन्वय ने भी अपने कपड़े लिए और अलमारी के पास आ गया। दोनों अगल बगल में खड़े थे। अन्वय ने अपने कपड़े रखते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो तुम ये जानने के लिए कि मुझे कॉलेज में किसी ने प्रपोज किया या नहीं? अन्वय का सवाल सुनकर आन्या ने उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहा, हाँ थी एक्साइटेड ये जानने के लिए कि तुम्हारी सड़ी सी शक्ल देखने के बाद भी कोई तुम्हें प्रपोज करने का रिस्क ले सकती है या नहीं। पर अब मैं समझ गई कि तुम्हारे जैसे पत्थर दिल को कोई लड़की नहीं पिघला सकती, चाहे कोई कुछ भी कर ले, उसे बदले में हमेशा निराशा ही मिलेगी। क्योंकि ये प्यार व्यापार तुम्हारे लिए नहीं बना है और ना ही कभी बन सकता है। क्योंकि तुम्हारे पास दिल है ही नहीं, तो किसी के लिए एहसास कहाँ से जन्म लेंगे। तुम बिल्कुल निर्मोही हो, जैसे इंसान ना होकर कुछ और हो, भूत प्रेत या वैम्पायर। आन्या के मुंह से एक बार फिर वैम्पायर शब्द सुनकर अन्वय ने तुरंत सवाल किया, तुम कभी वैम्पायर से मिली हो, जानती हो उन्हें?
नहीं, पर शायद एक बार देखा है। पता है उस रात क्या हुआ था? ये कहते हुए आन्या ने जंगल में खोने से लेकर वैम्पायर को देखकर बेहोश होने वाली सारी बात उसे बता दी और फिर कन्फ्यूज नजरों से उसे देखते हुए आगे बोलने लगी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं तो जंगल में बेहोश हो गई थी, फिर अगले दिन अपने घर में मेरी आंखें कैसे खुली? और अगर वो वैम्पायर था तो उसने मेरा खून पीकर मुझे मारा क्यों नहीं? वैम्पायर तो इंसानों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं ना, फिर उसने मुझे छोड़ कैसे दिया?
सारे वैम्पायर एक जैसे नहीं होते, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाकर अपनी प्यास बुझाते हैं तो कुछ शांति से अपनी जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं। अन्वय के मुंह से अनायास ही निकल गया, तो आन्या टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। अन्वय ने उसका रिएक्शन देखा तो बात संभालते हुए बोला, मेरा मतलब ये है, जैसे हम इंसानों की अपनी दुनिया है वैसे उनकी भी होगी। उनमें से कुछ मेरी जैसी सोच वाले भी होंगे कि हमें दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, अपनी जिंदगी चैन से जिए और दूसरों को भी चैन की जिंदगी जीने दें। हाँ, हो सकता है कि कुछ वैम्पायर तुम्हारे जैसे अकड़ू सड़ियल और घमंडी हों, पर क्या कुछ मेरे जैसे जिंदा दिल बकबक की दुकान भी होंगे वहां? आन्या ने आंखों में चमक लाते हुए उससे सवाल किया। अन्वय ने एक पल उसे देखा, फिर नजरें फेरते हुए बोला, मुझे कैसे पता होगा? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम वैम्पायर थोड़े ना हो, आन्या ने सर पर हाथ मारते हुए कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। अन्वय की घूरती निगाहें उस पर पड़ी तो आन्या ने अपने होठों पर उंगली रख ली, पर अब भी उसके लब और आंखें मुस्कुरा रही थीं। अन्वय ने उसके बकवास से बचने के लिए किचन की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, डिनर मैं बनाऊंगा और इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, तुम्हें किचन में आने की इजाजत नहीं है तो यहीं रहना।
उसने सख्ती से अपनी बात कही और चला गया। आन्या मुंह फुलाकर उसे देखती रही, फिर उसने टीवी चलाकर गाने लगा दिए और सब भूलकर गाने के बोलों पर झूमने लगी। गाने की आवाज़ अन्वय भी सुन पा रहा था, साथ में आन्या के गुनगुनाने की आवाज़ भी उसे सुनाई दे रही थी। अन्वय के लबों पर हल्की मुस्कान छा गई और वो गाने सुनते हुए काम करने लगा। कुछ एक घंटे बाद वो बाहर आया, पर कदम किचन के एंट्रेंस पर ही रुक गए। आन्या मस्ती में झूम झूम कर कमर मटकाते हुए नॉनस्टॉप नाच रही थी। दुपट्टा हवा में लहरा रहा था, चोटी से छोटी छोटी लटे निकलकर उसके चेहरे पर गर्दन पर बिखर गए थे। चेहरे पर पसीने की बूंदें सफ़ेद मोतियों जैसे चमक रही थी। आन्या इस वक्त और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। अन्वय भी उस पर से अपनी नज़रें हटाने में असमर्थ ही रहा। जैसे झील के पास उसे नहाते देख उसकी नज़रें उस पर ठहर गई थीं, वैसे ही इस वक्त आन्या को बेफिक्री से लहराते हुए डांस करते देख उसकी निगाहें उस पर जमसी गई थीं। वो अपलक आन्या के खूबसूरती से तराशे गए दिलकश चेहरे को देखता रहा, उसके इस रूप को अपने दिल में बसाने लगा। फिर उसने उस पर से अपनी नज़रें हटा लीं और बेड की तरफ बढ़ गया। आन्या को खुद में मग्न मस्ती में झूमे जा रही थी। अन्वय बेड पर किताबें लेकर बैठ गया, पर उसका सारा ध्यान आन्या पर था। वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी तो अन्वय ने बीच के पर्दे को नीचे खींच दिया। फिर भी उस झीने पर्दे से आन्या की धुंधली सूरत नजर आ रही थी और अन्वय की निगाहें उसकी तरफ बार बार मुड़ने को बेकरार हो रही थीं। कुछ देर बाद गाना खत्म हुआ तो आन्या मुस्कुराकर बेड पर गिर गई और अगले ही पल खिलखिलाकर हंस पड़ी। अन्वय उसकी निश्चल हंसी में खो सा गया, उसकी हर अदा अन्वय को अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ पल अन्वय उसे देखता रहा, फिर उसने अपना सारा ध्यान काम पर लगा दिया। आन्या खुद में ही बड़बड़ाने लगी। रात हुई तो दोनों ने डिनर किया, उसके बाद आन्या बेड पर बैठी यहाँ वहाँ नजरें घुमाती रही। अन्वय उसे ही देख रहा था। कुछ देर वो उसे देखता रहा, फिर किताबों पर नजरें गड़ाते हुए बोला, अगर बोर हो रही हो तो बुक शेल्फ से कोई किताब लेकर पढ़ सकती हो। उसकी बात सुनकर आन्या का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने झट से थैंक यू कहा और बेड से कूद गई तो अन्वय की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। अगले ही पल लबों पर मुस्कान खेल गई। आन्या ने एक किताब पसंद की और आलती पालती मारकर बेड पर बैठकर किताब पढ़ने लगी। रात के 12 बज गए थे, तब जाकर अन्वय ने अपनी किताबें बंद करके टेबल पर रखीं और सोने से पहले एक बार आन्या को देखने उसके तरफ आया तो आन्या आज फिर किताब मुंह पर रखे सो चुकी थी। अन्वय के लब मुस्कुरा उठे। उसने किताब लेकर टेबल पर रखी और उसे अच्छे से लिटाकर कवर कर दिया। उसके बाद वो खुद भी लेट गया।